તારીખ 14/1/1998 શ્રી સમયસર ગાથા 6 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું કલકત્તામાં પ્રવચન સળમ પ્રવચન નંબર 257 મૂળ કેસેટમાં શરૂઆતમાં અવાજ ધીમો છે.
આત્મા શુદ્ધ જ્ઞાયક તત્વ છે, જ્ઞાયક પણ હંમેશા પોતાનો સ્વભાવ છોડ્યા વિના પોતાના સ્વરૂપે રહે છે. એ શુદ્ધનો વિષય છે. શુદ્ધનો વિષય એટલે શું છે? જે જ્ઞાન પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપને અવલંબીને સ્વરૂપનો અનુભવ કરે, એ જ્ઞાનના અંશને શુદ્ધ ન કહેવામાં આવે છે. અન્ય જે પરસંયોગ જનિત ભેદ છે, અન્ય જે પરસંયોગ જનિત ભેદ હે, પણ ભેદ ભેદરૂપ અશુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક નહીં કે વિષય હે. ભેદ હૈ દ્રવ્યમાં ભેદ હૈ, ગુણ પર્યાય વગેરે, કોઈ દ્રવ્યાર્થિક નહીં કા વિષય તો હૈ, લેકિન એસે ભેદ કે જાણને મેં વિકલ્પ કી ઉત્પત્તિ હોતી હૈ. વિકલ્પ અશુદ્ધ પર્યાય હૈ, ઇસલિયે ઉસકો અશુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક નહીં કા વિષય બતાયા ગયા હૈ. અશુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક નહીં ભી શુદ્ધ દ્રવ્ય કી દ્રષ્ટિ સે પર્યાયાર્થિક ભી નહીં હૈ. અશુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક નહીં કહો કે ભેદરૂપ પર્યાયાર્થિક નહીં કહો, એ વાત એટલે એ પર્યાયાર્થિક નહીં હૈ, વ્યવહાર નહીં હૈ, એસા સમજના ચાહીએ. ઇસ તરહ સે ભાવાર્થ મેં જો નાયક તત્વ હૈ વો શુદ્ધ નહીં કા વિષય હૈ, એસા કહે કરકે इसके सिवाय गुण पर्याय का भेद है, शुद्ध अशुद्ध का भेद है, और तो व्यवहारणी का विषय है, पर्याय अर्थनी का विषय है, ऐसा कहा. उसमें भी गुरुदेव का और भी भेद लेते थे कि व्यवहारणी में वो दो तरह का है, सद्भुत भी है और असद्भुत भी है. સદભૂત કા ભી દો ભેદ હૈ, ઉચ્ચરિત ભી હૈ, અનુચ્ચરિત ભી હૈ. અસદભૂત કા ભી દો ભેદ હૈ, ઉચ્ચરિત હૈ ઔર અનુચ્ચરિત હૈ. એટલે વ્યવહાર મેં ચાર ભેદ કી ચર્ચા કરતે થે. તો સબ જાણને કા વિષય હૈ, ઇતના કોઈ પ્રયોજનભૂત નહીં હૈ. તો વો બતા સકતે હૈ, લેકિન ઇતના કોઈ દિમાગ લગાના કોઈ જરૂરત. યહાં યહ ભી જાણના ચાહીએ कि जीव मत का कथन त्यागवाद रूप है. ये भी बात यहाँ जाननी चाहिए. यह आत्मा को शुद्ध नायक तत्व कहा तो भी ये अपेक्षित बात है. इसलिए अशुद्ध नहीं को सर्वथा अप्रत्याशन में माना जाए. इसलिए पर्याय भेद शुभ शुभाव तो सर्वथा है ही नहीं, अपने स्थान में भी नहीं है, ऐसा नहीं मानना चाहिए. क्योंकि त्यागवाद प्रमाण से शुद्धता और अशुद्धता दोनों वस्तु के कर्म है. जीव के भी भाव है, शुद्ध भाव भी जीव के हैं और अशुद्ध भाव भी जीव का ही है. तो वस्तु के धर्म में जो भाव धारण किया जाए उसको धर्म कहते हैं. धर्म मैंने यहाँ समीर दर्शन ज्ञान चारित्र में अशुद्धता भी जीव का धर्म है और शुद्धता भी जीव का धर्म है. धर्म मैंने धारण किया हुआ भाव, मैंने कैरेक्टर. और वस्तु धर्म वस्तु का सत्व है, और वस्तु का जो धारण किया हुआ भाव है वो वस्तु का सत्व है, कुछ न कुछ इसका अंश है. अंतर मात्र इतना ही है कि अशुद्धता पर द्रव्य के संयोग से होती है। बात जो विशेष है वो उतनी है कि जीव पर द्रव्य का संयोग में उपयोग डालता है तब तो उसको अशुद्धता होती है। अशुद्ध नहीं को यहां ही कहा है क्योंकि अशुद्ध नहीं का विषय संसार है। अशुद्ध नहीं को छोड़ने योग्य इसलिए कहा कि यहां से विकल्प की उत्पत्ति होती है और जीव स्वरूप से बाहर निकल जाता है, इसलिए इसका विषय संसार है। थोड़ा अगला अगला भी जाओ। और संसार में आत्मा क्लेश को भोगता है, आकुलता उत्पन्न थाई छे। उपयोग स्वरूप से बाहर निकला तो आकुलता को लेकर के ही बाहर निकलेगा, स्वरूप में रहेगा तो निराकुलता और शांति को अनुभव करेगा। जब स्वयं परद्रव्य से भिन्न होता है तब संसार छूटता है और क्लेश दूर हो जाता है। क्या कहा? जब स्वयं परद्रव्य से भिन्न होता है, मैंने परद्रव्य से भिन्न अपना स्वरूप का अनुभव करता है तब वो स्वरूप में लीन रहता है तो संसार छूटता है और क्लेश नहीं होता, दूर हो जाता है। इस प्रकार दुख मिटाने के लिए शुद्ध नहीं का उपदेश प्रधान है। यही तो मैंने दिखाया कि यह शुद्ध नहीं का विषय शुद्ध आत्मा परम आत्मा परमात्म तत्व दिखाया। वो क्यों क्यों दिखाया? दुख मिटाने के लिए दिखाया। कृपालु देव ने भी पहली गाथा में वही बात किया कि जो स्वरूप समझे बिना पायो दुख। तो ये शुद्ध स्वरूप इसलिए समझाते हैं कि दुख को मिटाना है, इसलिए प्रधानता से मुख्यता से इस ग्रंथ में शुद्ध स्वरूप का उपदेश दिया है। फिर से दुख मिटाने के हेतु से इस परमागम में शुद्ध आत्म तत्व स्वरूप का उपदेश प्रधान रूप से किया है। इस उपदेश में तो मुख्य बात वो आती है कि आप वैसा करिए और वैसा मत करिए, वो एक उपदेश बोध का एक प्रकरण है जिसमें कर्तव्य और अकर्तव्य की चर्चा विस्तार से की जाती है कि इस प्रकार से अनेक दोष नहीं करना चाहिए और इस प्रकार से निर्दोष भाव को करना चाहिए। यहाँ शुद्धात्म स्वरूप तेरा ऐसा है ऐसा उपदेश दिया है तो उसमें ऐसा शुद्धात्म स्वरूप का श्रद्धान ज्ञान आचरण दीनता करने से दुख मिट जाता है, दोष मिट जाता है। इस प्रकार से यहाँ शुद्ध स्वरूप का उपदेश किया है। प्रधान है मेरे मुख्यता से किया है। अशुद्ध नहीं को असत्यार्थ कहने से यह न समझना चाहिए कि आकाश के फूल की भांति वह वस्तु धर्म सर्वथा नहीं है। पर्याय की अशुद्धता की यह गौणता कराई है इसलिए बिल्कुल है ही नहीं, ऐसा नहीं समझना चाहिए। जैसे आकाश के फूल नहीं होते ऐसे नहीं होते, ऐसा सर्वथा एकांत समझने से मिथ्यात्व होता है। ऐसा एकांत समझने से आत्मा को सर्वथा शुद्ध मानने से तो मिथ्यात्व होता है। अवस्था में अशुद्धता है, भले इसकी गौणता है लेकिन उसको समझना तो चाहिए। इसलिए श्यादवाद की शरण लेकर शुद्ध नहीं का आलंबन लेना चाहिए। अब क्या बात किया कि समझना और आलंबन लेना और गौण करना तो समझना तो बात सामान्य है, आलम्बन लेने में भी और गौण करने में भी। समझ करके आलम्बन भी लेना है और गौण भी करना है। आलम्बन किसका लेना है? अपना स्वरूप का। समझ करके गौण किसको करना है? अपने पर्यायार्थिक व्यवहार के विषय को गौण करना है, पर्याय के विषय को गौण करना है। तो स्यादवाद से दोनों बात समझना है, शुद्ध स्वरूप को भी समझना है, पर्याय की शुद्धि अशुद्धि को भी समझना है। आलम्बन शुद्ध स्वरूप का लेना है, आलम्बन पर्याय का लेना नहीं है। पर्याय का आलम्बन तो अनादि से एकांत रूप से हम ले ही रहे हैं और शुद्ध शुद्ध स्वरूप को कभी जाना ही नहीं और आलम्बन भी नहीं लिया। जब शुद्ध स्वरूप का यथार्थ समझ आती है तब वो यथार्थता में यह शुद्ध स्वरूप मेरा आलम्बन लेने योग्य है ऐसी समझ आती है। और जब ऐसी समझ पूर्वक यथार्थ समझ पूर्वक अपना शुद्ध स्वरूप का आलम्बन लिया जाता है तो पर्याय का एकांत आलम्बन लिया था वो छूट जाता है। आलम्बन छूटता है लेकिन ज्ञान नहीं छूटता, ज्ञान रहता है। इस तरह से बात है। इसलिए हम लोगों को स्वाध्याय में जो भी बात हमारे सामने आए उसमें हमको आलम्बन किसका लेना है और गौणता किसकी करनी है इस प्रकार की खतावनी करनी चाहिए। दो खाते हैं, एक खाता आलम्बन लेने का है, दूसरा खाता गौण करने का है। जानना दोनों का होगा, जान करके हमको खतावनी करनी पड़ेगी। तो वो बात हमको हमेशा हमेशा यथार्थ रूप से होनी चाहिए कि हमको आलम्बन किसका लेना है और जान करके गौण कैसे करना है। ये बात हमारे समझ में स्वाध्याय में भी आनी चाहिए। वरना क्या होगा कि आलम्बन लेने का विषय गौण हो जाएगा और गौण करने का विषय आलम्बन में आ जाएगा। ये बात उल्टी हो जाएगी, स्वाध्याय करते हुए भी उल्टी हो जाएगी। ऐसा नहीं हुए वो हमेशा हमेशा ध्यान में रखना है।
इसके लिए क्या ख्याल रखना चाहिए कि जिसमें एक भूल नहीं हो जाए कि आलम्बन का विषय में आलम्बन लेना गौण करने का
विषय। ये चर्चा हमने करी, नैना विषय बात करी, हमने चर्चा ये करी कि शुद्धने का विषय अपना परम तत्व परमात्म स्वरूप निजात्मा है, वो एक ही आलम्बन का विषय है। बाकी का सब विषय जो भी है वो जान करके गौण करने का है, आलम्बन लेने का नहीं है। एक दृष्टांत दे दे कि एक बात प्रसिद्ध है कि जो समय में जो होने वाला है वही होता है। तो भगवान ने जो सर्वज्ञ परमात्मा ने देखा है केवल ज्ञान वैसा होता है। अब वो बात है अवस्था के, जो होता है वो तो अवस्था में होता है ना। तो उसका आलम्बन से कभी शांति होती है कि चलो जो होने था सो हो गया। जैसे कुछ नुकसान हुआ, कुछ नुकसान हुआ और हमने समाधान किया कि भी जो कुछ होने वाला है वही हुआ, नहीं होने वाला था वो नहीं हुआ, ऐसा ही होने वाला था, इसलिए हमको आकुलता नहीं करनी चाहिए।
उसमें हमने जो कुछ हुआ ऐसी अवस्था का आलम मन ले लिया। इस तरह से भूल कैसे होती है इस लाइन में, तत्व ज्ञान को समझ करके भी भूल होती है, तो इस तरह से भूल हो जाती है। तो हमें कैसे लेना चाहिए कि देखो हम तो शुद्ध ज्ञायक तत्व है, जो कुछ हुआ वो तो हमारे से भिन्न है उसमें हुआ है, तो मैं भिन्न ज्ञायक तत्व हूं ऐसा आलम्बन लेकर के उसको गौण कर देना चाहिए। ऐसा स्वरूप का आलम्बन नहीं लेकर के हम पर्याय का आलम्बन लेकर के समाधान कर सकते हैं, लेकिन उसमें पर्याय का आलम्बन आ जाता है वो विपरीतता है, क्योंकि वो समाधान टिकने वाला नहीं है। वो समाधान यथार्थ नहीं है इसलिए टिकने वाला नहीं है। अब मुमुक्षु को भी बात तो सब समझ में आती है कि नहीं आती है, बात तो समझाई जाती है कि देखो स्वाध्याय में बहुत सी बातें आएंगी तो आपको खतानी करनी है, कि जो बात जान करके गौण करने की है वो आलम्बन लेने की नहीं है, तो आलम्बन नहीं लिया जाए वो बात तो कर सकते हैं। अब बात रही शुद्ध स्वरूप को जाना नहीं, शुद्ध स्वरूप को हमें जाना नहीं तो इसका आलम्बन नहीं आता है, लेकिन खुटी पकड़ गया उल्टी परिस्थिति को तो मजबूत नहीं करेंगे, तो इसलिए वहां ऐसा रखेंगे कि हमको श्री गुरु का आलम्बन लेना चाहिए कि देखो वो क्या करता है, हम नजरिया लगाए वो कैसे करते हैं। अवलंबन श्री सदगुरु सुगम और सुख खान, सुख के खाने बताया। तो जहां तक स्वरूप का आलम्बन नहीं आता है वहां तक गुरु का आलम्बन लेने में आता है, और उसके नीचे हम चले गए तो गुरु भी नहीं है कि जिसका आलम्बन ले रहे, अब क्या करें। कि हमको यथार्थ रूप से हमारा आत्म कल्याण करना है, इस भावना का आलम्बन ले रहे, आत्म कल्याण की भावना का आलम्बन ले रहे, और वो आत्म कल्याण शुद्ध स्वरूप के आलम्बन बिना होता नहीं, तो हमको हमारे शुद्ध स्वरूप की अंतर खोज होनी चाहिए, इसमें हम लगे रहे हैं। तो इस खोज में लगने से जो उदासीनता आएगी वो उदासीनता से ये लाभ नुकसान वाली जो बात है वो सहज गुण हो जाएगी। इसलिए ज्ञानियों ने उदासीनता का क्रम शुरू से ही सेवन करने की आज्ञा दी है। 172 पत्र है, उसमें क्या लिया कृपालु देव का 172 नंबर के पत्र में, निरंतर उदासीनता का क्रम का सेवन करना और सत्पुरुष के भक्ति में लीन रहना। तो क्रम से बात किया है वो भी क्रम से बात किया है, हम सत्पुरुष की भक्ति तो करें और उदासीनता में नहीं रहे तो
उदासीनता मन संता
निरस्ता उदासीनता माने निरस्ता। हमारे उदय में हम निरस्त तो रहे नहीं, उसमें तो रस लेने लगे, और स्वाध्याय करे तब सत्पुरुष की भक्ति गुणगान करते रहे, और घर में दुकान में जाकर के पूरा रस लेने लेते रहे, वो बात यथार्थ नहीं है।
फिर
ये पूछेंगे हमारा काम नहीं होता, स्वाध्याय तो करते हैं सत्पुरुष की भक्ति और गुणगान तो करते हैं लेकिन हमारा काम तो नहीं हो रहा है, तो कहां से होगा। हम घर में जाके प्रतिबंध तो दृढ़ करते हैं, ये मेरे हैं ये मेरे हैं सब ठीक रहने चाहिए, वो ये सब सब उसकी सावधानी आ जाती है, तो प्रतिबंध तो तगड़ा होता जाता है। एक और हम स्वाध्याय करें, दूसरे और प्रतिबंध को मजबूत करें, काम कभी होने वाला है नहीं। यहाँ तो ऐसा शिष्य लिया है कि जो शुद्ध नहीं का अवलंबन लेने की योग्यता में आया है, इसलिए ये चर्चा इस प्रकार से चल रही है। समय सार में जो मुमुक्षु को नजर में रख करके लिखा गया है वो बात तो वो है कि वो सम्यक दर्शन पाने के उच्च कोटि में आ गया है, उसको उपदेश देते हैं। नीचे वाले में अपनी भूमिका के अनुसार सब बातें समझनी चाहिए। वो बात सातवीं गाथा में से निकलती है। आप कहेंगे कि आपने कैसा ये जाना कि ऐसा ही मुमुक्षु को लिया है, तो सातवीं गाथा में वो बात है। एक ज्ञायक आत्मा को अपने को गाथा लेनी है, छठी पूरी होने के बाद वही लेनी है, लेकिन थोड़ा आउटलाइन देते हैं कि एक इस एक ज्ञायक आत्मा को बंध पर्याय के निमित्त से अशुद्धता जो होती है उसकी तो हम चर्चा यहाँ करते ही नहीं सातवीं गाथा में, क्योंकि वो तो छठी गाथा में हो गया कि वो प्रमत्त दशा है और इससे मैं भी न हूं, वो बात तो इधर नहीं। किंतु वो नायक आत्मा को दर्शन ज्ञान चारित्र भी विद्यमान नहीं है। क्या ज्ञान दर्शन चारित्र आत्मा को नहीं है, ऐसा उपदेश दिया। इसका मतलब क्या है कि वो ज्ञान दर्शन चारित्र ऐसे गुण भेद है, वो गुण भेद का अवलंबन हमें नहीं लेना है वो व्यवहार नहीं में पर्यायार्थिक नहीं में जाता है, अशुद्ध द्रव्यार्थिक में जाता है, इसलिए इसका अवलंबन हमें नहीं लेना है। उसको भी नहीं है क्योंकि अनंत धर्मों वाले एक धर्मी में जो निष्णात नहीं है, अभी भेद में भेद को ही देखता है, वो एक रूप अज्ञायक तत्व का अवलंबन लेने के लिए एक्सपर्ट नहीं है, निष्णात नहीं है, मैंने प्रवीण नहीं है, निपुण नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है, ऐसे निकटवर्ती शिष्यों को, कैसे शिष्यों को, निकटवर्ती को लिया है, दूरवर्ती शिष्य को नहीं लिया है, निकटवर्ती शिष्य की बात इधर लिया है। ये सातवें गाथा में से निकलता है कि किसको उपदेश देते हैं ये बात का, क्योंकि ये बात रही टॉप लेवल की। संस्कृत छेनो अंतेवासी जन, एग्जैक्ट वर्ड तो ही है अंतेवासी जन। यतः हि अनंत धर्माणि एकस्मिन् धर्मणि अनिष्णान्तस्य अन्तेवासी जनस्य तद् अवबोध विधायिभिः कैश्चित् धर्मे हि स्वयं अनुशासतां सूरिणां धर्मधर्मिणोः स्वभावतः अभेदेपि व्यपदेशतो भेदम उत्पाद्य व्यवहार मात्र नहीं ज्ञानिनो दर्शनम ज्ञानम चारित्रम इति उपदेशः। ऐसा करके लंबा चौड़ा वाक्य है, लेकिन इसमें अंतेवासी जन ऐसा लिया है। क्या अंतेवासी किसको बोलते हैं, जो समीप में होते हैं उसको अंतेवासी कहते हैं, जबकि हम गुरुदेव के अंतेवासी थे ऐसे बोल सकते हैं। क्यों, क्यों उसके समीप में हम थे, क्षेत्र से भले ही समीप में ना हो, भाव से समीप में हो तो वो अंतेवासी है, कि इनके भाव को हम समझते हैं, समझ सकते हैं, और हमारे भाव को वो अच्छी तरह समझ सकते हैं, इसलिए हमारी योग्यता को समझ करके वो उपदेश देते हैं। इसको अंतेवासी जन यानी निकटवर्ती शिष्य कहने में आया है। तो भले वो एक धर्मी में एक धर्मी अभेद स्वरूप को अवलंबन लेने में काबिल नहीं है, एक्सपर्ट नहीं हुआ है, इसलिए दर्शन ज्ञान चारित्र के भेद को देखता है, लेकिन योग्यता कैसी है, निकटवर्ती है, इसलिए इस उपदेश से उनको भेद को छुड़ाकर अभेद के अवलंबन में ले जाएंगे उपदेश दे करके। ये बात है, ऐसी बात है। तो ये बात थोड़ा विस्तार से उस गाथा की टीका में लेंगे। एक महापुरुष को के साथ कई लोगों का संबंध होता है, सैकड़ों लोगों का। भले ही कृपालु जी भ्रष्ट में थे तो भी 150 जने इनके परिचय में थे, लेकिन सब एक दर्जे के नहीं होते, सब एक योग्यता वाले नहीं होते, हर एक की योग्यता अलग अलग होती है। लेकिन जो विशेष रूप से पात्र है उनको अंतेवासी जन कहने में आता है, क्योंकि वो इसके समीप रहते हैं, और समीपता होती है भाव में तो आत्मीयता होती है। क्या होती है?
आत्मीयता
होती है। आत्मीयता होती है तो आत्मीयता के कारण से वो अपने परिणाम बताते हैं, वो अपने परिणाम बताते हैं, संकोच नहीं रहता। जब तक संकोच रहता है वहां तक आत्मीयता नहीं है। तो ये बात बनी है, इसलिए उसको अंतेवासी जन कहने में आते हैं, तो बोले जाते हैं ये सुभाग भाई थे, नंदू जी स्वामी थे, अम्बालाल भाई थे, जूठा भाई थे, वो कृपालु देव के अंतेवासी थे, ऐसे बोलने में आते थे ये लोग। बाकी तो सैकड़ों लोग सुनने को खंभात में आते थे, खंभात में बड़ी सभा हो जाती थी कृपालु देव के उपदेश के वक्त। बाकी तो ज्यादा एकांत में रहते थे तो लोगों को, उन लोगों को आने नहीं देते, लेकिन अंतेवासी जन तो वहां भी जाते थे। सामान्य जन समाज को जो दूरवर्ती है उन उसको नहीं आने देंगे।
गांधी जी का अंतेवासी,
हाँ गांधी जी के वो सरदार वल्लभ भाई थे, मिठल भाई पटेल थे, मणिबेन गांधी थी, सब इनके अंतेवासी थे। तो ऐसे कुछ लोग अंतेवासी होते हैं। यहाँ योग्यता के कारण से अंतेवासीपना होता है। जो इस प्रकार के उच्च कोटि के उपदेश को झेलने के लिए योग्य होते हैं, झेल सकते हैं और अपना आत्मकल्याण कर सकते हैं, वो सारा ग्रंथ में वो बात लेना है कि किसको ये उपदेश दिया जाता है। इसमें से परमार्थ क्या निकलता है कि अगर हमारी योग्यता ऐसी उच्च कोटि की नहीं है तो हमको हमारी योग्यता ऐसी बनानी चाहिए, वो परमार्थ उसमें से निकलता है। इसलिए हमारे प्रयोजन की बात नहीं है, ऐसा करके हमें उदास नहीं रहना है या नेग्लिजेंस में नहीं जाना है कि निग्लेक्ट कर दो इस बात को, ऐसा नहीं होना चाहिए।
सुभाष भाई ने साइलेमा बैठा हुआ पर भाव में कृपाल ने नजदीक आता है तो इतने लगता है कि पेट देवा जेवा तुम्हें त्यां बैठा शो।
हाँ हम कहता था अगर हम हमारे पेट को खोल सकते हैं तो आपके पास खोल सकते हैं, ऐसी बात है।
ये रियल अंतेवासी।
क्या हुआ, बहुत प्रेम था कृपालु देव के प्रति, सुभाष भाई को बहुत प्रेम था, और ये जो फीलिंग है वो वनवे ट्रैफिक वाली नहीं होती है। तो कृपालु देव को भी सुभाष भाई के प्रति बहुत प्रेम था, लेकिन कृपालु सुभाष भाई को क्या है कि इस मनुष्य भाव में जीते जीते वृद्धावस्था में आ गए थे। जब कृपालु देव मिले तब वो 66-67 करीब थे। कृपालु देव 44 साल छोटे थे। कितने? सुभाष भाई के लड़के बड़े बड़े थे कृपालु देव से। था 20 साल तो एक वन जनरेशन पीरियड बोला जाता है, तो ये 2 जनरेशन पीरियड था। इतना अंतर था दोनों के आयुष्य में। फिर भी उनको लगा कि मुझे मेरा परमात्मा मिल गया, उसको परमेश्वर बुद्धि आ गई। तो एक पत्र में लिखते हैं, वो बंबई आए थे, एक ही वाक्य का एक पत्र है, श्री सुभाग यहाँ पर प्रेम समाधि में है। प्रेम समाधि माने क्या? लेकिन उनका ध्यान बहुत नहीं रहता था कि हमको सम्यक दर्शन चाहिए, उनके बीज ज्ञान चाहिए, हमको केवल ज्ञान चाहिए। वो बात उनको सब कुछ मिल गया है, अभी हमको सब कुछ मिल गया है। तो उनका एक ही ध्यान रहता था, दूसरा कोई ध्यान नहीं रहता था। एक कोई एक ही दिखाई देते थे, दूसरे कोई दिखाई नहीं देते थे। उसको नाम कहते हैं समाधि। वो समाधि भाव में रहते थे। कृपा जी जानते थे कि ठीक ऐसा हो सकता है, ऐसा होता भी है, चलो देखा जाएगा, आगे आगे देखा जाएगा। क्योंकि वो तो उठाने वाले तो थे ही, तो उसी का ही प्रयोग किया। क्योंकि प्रेम है वो सानिध्य चाहता है, तो उसके संग में वो रहना चाहते थे। परिस्थिति वैसी नहीं थी कि हमेशा रह सके। तो आखिर में उनको वियोग में रखने का प्रयोग किया। तो वियोग में प्रेम और बढ़ गया। ऐसा नहीं है कि वियोग में कुछ कम हो जाता है, वो बात तो नहीं बनती, क्योंकि उसका स्वभाव बढ़ने का है। वो वियोग में भी बढ़ेगा और संयोग में भी बढ़ेगा, और बढ़ेगा। वियोग के बाद संयोग आएगा तो और बढ़ेगा, और संयोग से फिर वियोग होता और बढ़ेगा, फिर संयोग होता और बढ़ेगा। इसका स्वभाव बढ़ने का है, कम होने का है ही नहीं। लेकिन वो तो उतने विशिक्षण थे, तो हर तरह की ट्रीटमेंट देते थे। ये तो बात रही ट्रीटमेंट की, दवाई की नहीं। दवाई अलग बात है, ट्रीटमेंट अलग बात है। वो ट्रीटमेंट की बात थी, उसे ट्रीटमेंट दे दिया। तो ट्रीटमेंट से रिजल्ट क्या आया? कि एक तो उनको लक्ष्य था कि हमको ज्ञानी के मार्ग पर चलना है, ये दृढ़ निश्चयवान थे वो। हमारी मनमानी कुछ नहीं करनी है। और कृपालु देव पर अनहद विश्वास। कितना? अनहद विश्वास। जितना भगवान पर विश्वास आ जाए उतना विश्वास आ गया। अब बात वो रही, खुद को भी मालूम हो गया कि मेरा आयुष अब पूरा होने जा रहा है। डेथ बेड पर थे, मृत्युशैया। अब मैं जिंदा रहने वाला नहीं हूं, वो पता चल गया था। शरीर की स्थिति ऐसी कमजोर हो गई थी, 33 साल का करीब उम्र हो गया था। इस जमाने में 33 साल तो बहुत बड़ी बात थी।
50 का लिमिट।
हाँ, हमारे ग्रैंडफादर थे, 75 साल की उम्र में गुजर गए। साल भर वो डेथ बेड पर रहे थे, कोई बीमारी नहीं, लेकिन वीकनेस इतनी कि वो सोए रहना पड़े, लेटे रहना पड़े। लेकिन क्या है कि ऑर्गन्स सब काम करने बंद हो जाते हैं, हजम नहीं होता, ये सब स्टमक है तो वीक हो जाते हैं, तो उनका फंक्शनिंग है वो वीक हो जाता है। खुराक कम हो जाता है, कमजोरी और बढ़ जाती है। वृद्धावस्था तो है ही। तो इस तरह से उन्होंने देखा कि अब मेरा आयु तो पूरे होने जा रहा है, कृपालु देव आए तो सही वियोग में रख करके, लेकिन कोई बात ऐसी हुई कि जैसा हम कहें वैसा आपको करना है, अभी आयुष तो पूरा होने जा ही रहा है, हम भी जानते हैं आप भी जानते हैं, यहाँ ऐसे वैसे नहीं जाना है, खाली हाथ यहाँ से नहीं जाना है, कुछ लेके जाना है और हमको देना भी है और आपको लेना भी है, तो कुछ दिन तो रहे, लेकिन कोई यहाँ का जो एटमोस्फियर था वो अनुकूल नहीं देखा होगा, विचक्षण बहुत थे, तो बोले कि चलो अपने को इधर जाना है, इधर लेके
बीमार अवस्था में,
हाँ बीमार अवस्था में इधर ले गए। सायला में स्टेशन नहीं था रेलवे का, सिग्राम में या गाड़ा में बेलगाड़ा में मुड़ी स्टेशन जाना पड़ता, मुड़ी मुड़ी नाम स्टेशन है, अत्यारे स्टेशन है सुरेंद्रनगर मोरबी लाइन पर वाकानेर, सुरेंद्रनगर वाकानेर ने वे थान चोटीला मुड़ी आ बदा स्टेशन है, मुड़ी स्टेशन जाना पड़ता है, वहां से ट्रेन मिलती थी, वहां से फिर इधर चले गए बाय ट्रेन, वहां उन्होंने स्वरूप का भाव भाषण करवाया, तो ये जो अंतर्मुक्ता का जो प्रयोग है वो दिखाया होगा, बार बार दिखाया होगा, दिखने में कोई अड़चन हो तो उसको भी क्लियर किया होगा, सब प्रकार का वहां उनको जो भी आगे की बात थी वो बीज ज्ञान की प्राप्ति वहां होगी, वो जिसको भी स्वरूप का भाव भाषण होता है उसके ज्ञान और पुरुषार्थ की दिशा बदल जाती है, स्वरूप सन्मुखता की हो जाती है, और उस दिशा को सम्यत्व सन्मुख दिशा भी कहने में आई है, तो सम्यक सन्मुख करा दिया वहां से, और सम्यक सन्मुख दिशा में पुरुषार्थ का उत्थान बहुत जोर से आ जाता है, वो आ गया, देख लिया कि अब उनको बराबर राइट ट्रैक पर परिणाम की गाड़ी चल रही है, ने छोड़ दिया, वो चले गए मुंबई, उनको भेज दिए साइला, और अम्बालाल भाई को आज्ञा कर दी कि तुम उसकी सेवा में चले जाओ, और वहां उनकी तबीयत बीमारी तो है ही, कमजोरी भी बहुत है, अच्छी तरह से सेवा करते रहिए और सत्संग भी करते रहो दोनों, तो हफ्ते भर में वो निर्विकल दशा सम्यक दर्शन को प्राप्त किया, और पुरुषार्थ के जोर में आगे कभी तो केवल नाम लूंगा, अब हम मस्ती में हैं, हमको डिस्टर्ब मत करना, अम्बालाल भाई कुछ बोले सत्संग करने में, कभी क्या है किसी को बोलने का आदत होता है कि तुम मत बोलो, अब हमारे अंदर का जो चलता है उसमें हमको डिस्टर्ब मत करो, हम बच्चा सब बात समझते हैं, तो तुमको समझना है तो हम समझाएंगे, केवल ज्ञान होने पर सब समझा देंगे, हमको पुरुषार्थ करके केवल ज्ञान लेने दो, अभी हमें अनुभव तो हो गया है, अब तो केवल ज्ञान लेने की बात है, तो बीमारी को भी भूल गए, वृद्धावस्था को भी भूल गए, सब कुछ भूल गए, ऐसा हो जाता है, तो संसार परिभ्रमण करते हुए जीव को अनंत तीर्थंकरों के समोसरण में जाके जो काम नहीं होता है वो काम इधर हो जाता है सत्पुरुष के योग से, इसलिए 213 पत्र में किया कि हे जिनेन्द्र हे परमात्मा आप बुरा मत लगाना, आपसे मैं अधिक भक्ति अगर सत्पुरुष की कर लूं तो आप बुरा मत लगाइए, तो अधिक भक्ति क्यों करते हैं कि आप तो वितराग थे, हमारी इतनी संभाल नहीं लेते थे, जितने सत्पुरुष ने ली क्या जिनेन्द्र भगवान फैल आते थे आ सकते हैं क्या नहीं और इधर दे जाते थे क्या क्या नहीं तो वो बात उन्होंने किया तो इसलिए वो बात ऐसे वो इस ढंग से पुटअप किया है 213 पत्र में जो सत्पुरुष के प्रत्यक्ष योग का जो महत्व दिखाने के लिए कलम चलाई है वो बात कहीं शास्त्र में देखने में नहीं आती। इतनी जबरदस्त बात क्या है तो कहते हैं कि श्यादवाद की शरण लेकर यानी श्यादवाद को अच्छी तरह समझ करके शुद्ध नय का अवलंबन लेना चाहिए यानी शुद्ध नय का विषयभूत जो शुद्ध आत्मा है उसका अवलंबन लेना चाहिए। स्वरूप की प्राप्ति होने के बाद शुद्ध नय का भी अवलंबन नहीं रहता है यानी स्वरूप की प्राप्ति होने से अनुभव होने से ज्ञान प्रमाण हो जाता है तो उसमें नय का अवलंबन नहीं है। युगपद द्रव पर्याय स्वरूप अपना निज अनुभव में दृढ़ होना होता है वो प्रमाण ज्ञान में बनता है। जो वस्तु स्वरूप है वह है यह प्रमाण दृष्टि है तो प्रमाण ज्ञान में आ जाता है और इसका फल वितरागता है तो इस फल में वितरागता भी उत्पन्न सम्यक दर्शन में होता है आत्म साक्षात्कार ज्ञान में होता है और चारित्र में वितरागता भी होती है क्योंकि उस वक्त राग का उत्पन्न होना नहीं बनता राग उत्पन्न नहीं होता। इस प्रकार निश्चय करना योग्य है इस प्रकार से इस बात को समझ करके निश्चय करना मैंने कॉन्सेप्ट को ठीक करना है इस प्रकार से सही कॉन्सेप्ट में आना है कोई हमारा मिसकॉन्सेप्ट हो तो वो मिटा देना चाहिए। यहां नायक भाव प्रमत अप्रमत नहीं है ऐसा कहा है इस गाथा में जो शुद्ध आत्मा है एक समय की शुद्ध अशुद्ध पर्याय रूप नहीं है ऐसा कहा है वह गुणस्थानों की परिपाटी में तो प्रमत अप्रमत के विषय में स्पष्टीकरण देते हैं कि जो 14 गुणस्थान है उस गुणस्थानों में 6ठे गुणस्थान तक प्रमत 4थे 5वें और 6ठे 3 गुणस्थान तक प्रमत मैंने 100 विकल्प दशा होती है शुद्धोपयोग कभी होता है निर्विकल्प दशा का लेकिन बहुत कम और उसका काल भी 1 सेकंड से भी कम है और 7वें से लेकर 8, 9, 10, 12 11वां नहीं लेता है क्योंकि वो गिरने का गुणस्थान है इसलिए 7, 8, 9, 10, 12 इस सभी गुणस्थान में अप्रमत कहलाता है क्योंकि सब में निर्विकल्पता है विकल्प की उत्पत्ति है ही नहीं इसलिए किंतु यह सब गुण स्थान अशुद्ध नहीं की कथनी में है प्रमत वाले गुण स्थान का कथन भी अशुद्ध नहीं में जाता है और अप्रमत वाला भी अशुद्ध नहीं क्योंकि वो पर्याय अर्थिक नहीं का विषय है व्यवहार नहीं का विषय है, भले ही सद्भुत व्यवहार है, भले ही सद्भुत व्यवहार है और सद्भुत उपचरित है, अनुपचरित गुण भेद को अनुपचरित कहते हैं, वो सातवीं गाथा का विषय है। छठी गाथा में सद्भुत उपचरित अनुपचरित और असद्भुत सद्भुत उपचरित और असद्भुत उपचरित अनुपचरित को लिया है, तीन व्यवहार को। किंतु यह सब गुण स्थान अशुद्ध नहीं की कथनी में है, शुद्ध नहीं से तो आत्मा नायक ही है, पर वो अवलंबन का विषय है, बाकी वो सब गौण करने की बात है। क्योंकि मूल स्वरूप है वो चौदह गुण स्थान से पार है, मूल स्वरूप जो है नायक तत्व वो चौदह गुण स्थान से पार है, इसलिए उसमें कोई अवस्था का भेद है भी नहीं और देखा भी नहीं जाता, पर वही आलंबन का विषय है, अवस्था को वो आलंबन का विषय है। इस तरह से पंडित जयचंद्र जी छाबड़ा करके जयपुर में एक ज्ञानी पुरुष हुए, उन्होंने ये भावार्थ लिखा है सारा। समय साहब की टीका अमृतचंद्र आचार्य ने लिखी है और ये भावार्थ है वो पंडित जयचंद्र जी छाबड़ा करके हुए, उन्होंने ये भावार्थ लिखा है। और भावार्थ में टीका है वो शास्त्रीय परिभाषा में है, विद्वत परिभाषा में है, जबकि ये भावार्थ है वो एकदम सादी भाषा में सारी गाथा का भावार्थ खोलते हैं। और कभी कभी वो भावार्थ लिखने में जो परखा नहीं समझने से नुकसान होता है उनको भी वो दिखा देते हैं। जैसे यहाँ स्यादवाद की बात किया, गाथा में तो एक नायक तत्व की बात शुद्ध निश्चय नहीं की बात थी, गाथा में कोई व्यवहार नहीं की बात थी नहीं, वो तो है ही नहीं, मैं ऐसा हूं नहीं ऐसा दिया, उन्होंने स्यादवाद की बात लेकर के वो बात समझा दी कि वो भी एक समझना है, वो सर्वथा नहीं है ऐसा नहीं समझना है, लेकिन समझ करके गौण रखना है, आलम्बन लेना नहीं है, उतना खोल दिया। इसलिए खोला कि किसी को नुकसान नहीं हो जाए। तो आचार्य ने तो निकटवर्ती शिष्य को ख्याल में रख करके वो बात नहीं खोली, उनको तो विश्वास था कि ये निकटवर्ती शिष्य को नुकसान होने वाला नहीं है, लेकिन ग्रंथ जब रहता है तब तो सारी समाज के हाथ में वो ग्रंथ आता है, ऐसे उच्च कोटि के मुमुक्षु के हाथ में आता है और दूसरे के हाथ में नहीं आता है वो नहीं बनता है। तो स्वाध्याय तो सब लोग करेंगे, तो उन्होंने ये बात ख्याल में रख करके, क्योंकि वो तो करीब 150 साल पहले हुए हैं पंडित जयचंद्र जी, और टीकाकार तो 900 साल पहले हुए थे, दोनों के काल में बहुत अंतर हुआ। उन्होंने देखा कि अभी ऐसा निकटवर्ती शिष्य उच्च कोटि के तो रेयर केस में ही मिलेंगे, अभी जो दिगंबर संप्रदाय का ये महान परमागम है तो लोग तो स्वाध्याय करेंगे पढ़ेंगे, उल्टा सुलटा नहीं हो जाए, तो उन्होंने और भी स्पष्टीकरण दे दिया कि जिससे कोई निश्चयाभासी नहीं हो जाए। बाकी आचार्य श्री को अविश्वास नहीं था कि इस शिष्य को निश्चयाभास होगा, तो उन्होंने ये बात नहीं खोली। तो जयचंद्र जी के भावार्थ को देख करके कहीं जगह ऐसा लगता है कि जो बात आचार्य ने नहीं खोली है वो बात जयचंद्र जी ने खोली है भावार्थ में, ऐसे कई जगह वो बात मिलती है इस तरह के। तो इसका कोई गलत अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि आचार्य श्री ने ये बात नहीं खोली, पंडित जयचंद्र जी तो ज्ञानी थे और वो तो मुनि थे, आचार्य तो ज्ञान तो आचार्य श्री का ज्यादा था, तो आचार्य श्री ने नहीं खोली, और ज्ञानी ने खोली तो क्या ज्ञानी का ज्ञान बढ़ गया क्या? ऐसा उल्टा लेना
नहीं।
आचार्य श्री का ज्ञान तो इससे भी बहुत सूक्ष्म गहरा और विशाल भी होता है, खास करके छठे गुण स्थान में जो भी होते हैं सामान्य रूप से सबको साधु बोला जाता है, वो भी गुणवाचक है। उत्कृष्ट रूप से स्वरूप को साधने का जिसका परिणमन है उसको बोलते हैं साधु। उत्कृष्ट प्रकार से स्वरूप को साधते हैं उसको बोलते हैं
साधु।
साधु उसमें भी कुछ साधु आचार्य होते हैं, कुछ उपाध्याय होते हैं, जिसको अपन उपाध्यायाणाम कहते हैं, वो उपाध्याय आचार्य होते हैं। उसका ज्ञान विशाल होता है और वो बहुत विचक्षण होते हैं। ऐसी कोई विशिष्ट परिस्थिति वाले साधु को ही आचार्य पद दिया जाता है, सबको नहीं दिया जाता। साधते हैं तो वो भी साधते हैं, साधु भी साधता है, आचार्य भी साधता है स्वरूप, लेकिन आचार्यों में इतनी विशिष्टता होती है। और उपाध्याय है उसमें आगम ज्ञान की विशिष्टता होती है, उसको आचरण ज्ञान की विशिष्टता होती है। तो वो पढ़ाते हैं, उपाध्याय है वो ज्यादा करके पढ़ाते हैं, और आचार्य है वो आचरण करते हैं और कराते हैं और इसका उपदेश भी देते हैं। और साधना कभी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि साधु की साधना कम होती है और आचार्य की ज्यादा होती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कभी ऐसा होता है कि आचार्य रह जाते हैं और साधु के ज्ञान को प्राप्त करता है, ऐसा भी बनता है। गुरु रहा छद्मस्त पर नहीं करे भगवान, तो उसमें क्या है, गुरु आचार्य है वो छद्मस्त रह जाते हैं और शिष्य है साधु केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। इसलिए आचार्य गंधर्व देव का भी पदवी आचार्य का है, लेकिन वो आचार्य शिरोमणि है, मैंने सर्वश्रेष्ठ आचार्य है वो, इसके आचार्यों में इसके आगे कोई, गंधर्व देव से आगे कोई नहीं होते, लेकिन पदवी आचार्य के हैं उनके। वो गंधर्व देव भी पंच परमेष्ठी मंत्र नमस्कार मंत्र का वो भी उच्चारण करते हैं मंगलाचरण में, तो उसमें नमो लोये सब सावण, उस सब सावण में अपने शिष्य भी आ जाते हैं, आचार्य के जो शिष्य साधु हैं वो भी उसमें आ जाते हैं। तो गुरु होकर के भी शिष्य को नमस्कार करते हैं, क्यों? कि वो बराबर जानते हैं कि शिष्य भी ऐसे होते हैं, उत्कृष्ट रूप से साधना करते हैं, हो सकता है कि उसका केवल ज्ञान हो जाए, कभी भी हो सकता है। इसलिए ऐसे साधना करने वाले को मैं नमस्कार करता हूं, क्योंकि मैं साधना को नमस्कार करता हूं, और साधना और साधक अभेद होने से साधक को नमस्कार हो ही जाता है। अगर साधना को नमस्कार नहीं किया जाए तो अपनी साधना कहां से टिकेगी? नमस्कार मैंने नमना, नमना मैंने झुकना, तो जो साधना में झुके हुए हैं वो तो साधना को नमस्कार करेंगे, चाहे किसी की भी हो, ऐसी विशालता है इसमें। इसलिए वो नीति है, क्या है
नीति?
नीति है, व्यवहार में ऐसा नहीं होता कि आचार्य अपने शिष्य को वंदन नमस्कार करने लगे। जैसे कि जंगल में एक आचार्य है, 10-20 साधु है, एक आचार्य है वो गुरु है, तो आते हैं तो सब उठ खड़े हो जाते हैं, और आचार्य श्री अपना स्थान लेवल में कुछ उच्च स्थान में अपना स्थान ग्रहण करते हैं तो साधु लोग प्रणाम करके फिर बैठेंगे नीचे, तो नीचे बैठेंगे लेकिन प्रणाम करके बैठेंगे, लेकिन आचार्य प्रणाम करके नहीं बैठेंगे अपने साधु को। व्यवहार तो व्यवहार के स्थान में होता है लेकिन नीति वो है कि नमो लोये सव सावणम, और खुद साधना को नमस्कार करेंगे, साधक को भी नमस्कार करेंगे, ऐसी थोड़ी अटपटी बात है लेकिन इसका भी समाधान है, वो नैतिक लेवल पे है, वो व्यवहारिक लेवल पर है, दोनों बात अलग अलग है। यहाँ तक रखे, सात कल से 7 बजे था स्वाध्याय चालू करेंगे।